તારીખ 13/8/1994 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 99.
શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક, સાતમા અધિકાર, જૈના ભાષી મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા સ્વરૂપ. જૈના ભાષી મિથ્યા દ્રષ્ટિ એટલે જૈન કુલ મેં જન્મ હુઆ હૈ, જિન દેવ જિન શાસ્ત્ર ઓર નિર્ગ્રંથ ગુરુ કો જો માન્યતા મેં સ્વીકારતા હૈ, માનતા હૈ, ફિર ભી ઉસકો ધર્મ કી પ્રાપ્તિ નહીં હોતી હૈ. કિસ પ્રકાર કી ભૂલ રહેતી હૈ તો ધર્મ કી પ્રાપ્તિ નહીં હોતી હૈ. અનેક પ્રકાર કા ઉસ વિષય મેં શ્રદ્ધાન કા દોષ, જ્ઞાન કા દોષ, આચરણ કા દોષ, એ ભૂલ રહે જાતી હૈ તો ઉસમેં ધર્મ સે વો વંચિત રહે જાતા હૈ. જિન ધર્મ કો નહીં પ્રાપ્ત કરતા હૈ. અબ યહાં પ્રકરણ યે ચલા હૈ કે આચરણ તો જિન શાસ્ત્ર અનુસાર કરતા હૈ, બાહ્યાચરણ તો જિન શાસ્ત્ર અનુસાર કરતા હૈ, લેકિન અભિપ્રાય કા દોષ હૈ ઇસલિયે ઉનકો ધર્મ કી પ્રાપ્તિ નહીં હો રહી હૈ. સામાન્ય બુદ્ધિ સે લૌકિક જન કા એસા વિચાર હોતા હૈ કે જ્ઞાન કિતના ભી હો આચરણ નહીં હો તો કિસ કામ કા જ્ઞાન. આપકા જ્ઞાન અચ્છા હૈ લેકિન આચરણ હોના ચાહિયે, યે આગ્રહ રખતે હૈ લૌકિક જન. યહાં કોઈ એસા પ્રસંગ હૈ કે આચરણ તો બહોત અચ્છા હૈ. કૈસા આચરણ હૈ કે દીક્ષા પણ લે લિયા હૈ, દીક્ષા અંગીકાર કર લિયા હૈ, ઓર જિન શાસ્ત્ર અનુસાર દીક્ષા કા પંચમાવ્રત આદિ કા પાલન કરતા હૈ, ફિર ભી ઉસકો ધર્મ કી પ્રાપ્તિ ક્યો નહીં હૈ, કે ઉસકા શ્રદ્ધાન જ્ઞાન ઠીક નહીં હૈ, અભિપ્રાય મેં વિપરીતતા હૈ, ઇસલિયે ઉસકા આચરણ ભી બેકાર હૈ. યે બાત ચલ રહી હૈ, જો પ્રકરણ ચલ રહા હૈ વો ઇસ પ્રકાર કા ચલ રહા હૈ. આગે અપન જહાં સે સ્વાધ્યાય પૂરા હુઆ હૈ, 251 પાનો ગુજરાતી માં, ગુજરાતી 251 પાનો, હિન્દી 246 પાનો. તથા ઉસકે રાજ્યાદિક વિષય સામગ્રી કા ત્યાગ હૈ. કિસકો? જિસને દીક્ષા અંગીકાર કિયા હૈ, એસા કોઈ રાજા ભી હૈ તો રાજ કા ભી ત્યાગ કર દિયા હૈ, ઓર રાજપાટ ત્યાગ કરકે પાંચ ઇન્દ્રિય કે વિષય ભોગ ઉપભોગ કા ભી ત્યાગ કિયા હૈ, ઓર ઇષ્ટ ભોજન આદિ કા ભી ત્યાગ કરતા રહા હૈ, ક્યુંકિ રાજા કો તો અચ્છા અચ્છા ભોજન મિલતા હૈ, વો ભી ઉસને છોડ દિયા હૈ. તો ભિક્ષા મેં આયેગા વો ખા લેગા. વહ તો ઉસમે ક્યા ઉસકા પરિણામ કૈસા રહેતા હૈ, અયથાર્થ પરિણામ કૈસા હૈ વો દિખાતે હૈ કે વહ તો જૈસે કોઈ દહાજવર વાલા વાયુ હોને કે ભય સે શીતલ વસ્તુ કા સેવન કા ત્યાગ કરતા હૈ, પરંતુ જબ તક શીતલ વસ્તુ કા સેવન રુચતા હૈ તબ તક ઉસકે દાહ કા અભાવ નહીં કહા જાતા. એક રોગી કા દ્રષ્ટાંત લિયા હૈ, કોઈ એસા રોગી હૈ કે જિસકો ગરમી સે બહોત દાહ હોતા હૈ, જલન હોતી હૈ, સારે બદન મેં જલન હોતી હો, લેકિન અગર વો શીતલ વસ્તુ કા સેવન કરે, ઠંડા પીના, ઠંડા કોઈ પીના હૈ, કોઈ ઠંડા ઉપચાર કરે તો ઉસકે વાયુ કા રોગ હો જાતા હૈ, એસા કોઈ રોગ હૈ તો શીતલ વસ્તુ કા સેવન કા ત્યાગ કરતા હૈ, શીતલ વસ્તુ નહીં લેતા હૈ, પરંતુ જબ તક શીતલ વસ્તુ કા સેવન રુચતા હૈ ઉસકો અચ્છા લગેગા, હવા ઠંડી આયેગી અચ્છા લગેગા, પાણી ઠંડા પિયેગા અચ્છા લગેગા, વો તો ઉસકો રુચેગા, રુચતા હૈ તબ તક ઉસકો દાહ કા અભાવ નહીં કહા જાતા હૈ, વહાં તક ઉસકો દાહ કા અભાવ નહીં હૈ, ઉસકા જલન ચાલુ હૈ. ઉસી પ્રકાર રાગ સહિત જીવ वो दृष्टांत है, अब सिद्धांत बताते हैं कि ठीक उसी प्रकार राग सहित जीव है जिसको राग की योग्यता है, परिणाम में राग का अभाव हो करके वीतरागता नहीं हुई है, ऐसा रागी जीव है। तो रागी होने पर भी त्याग कर दिया, राग रह गया और राग का विषय का त्याग कर दिया है, ऐसा जीव है वो। तो राग सहित जीव क्यों त्याग किया उसने, कि मैं त्याग नहीं करूंगा, भोग उपभोग में पड़ा रहूंगा संसार के, तो नरक आदि मेरी गति हो जाएगी और मैं बहुत दुख पाऊंगा वहां। तो नरक आदि के भय से उसने विषय सेवन का, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करता है, वो त्याग बराबर नहीं है, भय से त्याग किया है। अपने आत्मज्ञान से, वस्तु स्वरूप के ज्ञान से त्याग नहीं किया है, भय से त्याग किया है। अगर भय न हो, नहीं होता तो उसको कोई वादा नहीं है, इसका मतलब वो हो गया। जैसे कोई चोरी करता है, चोरी करने की जिसकी आदत है, लेकिन राज का और समाज का भय से चोरी नहीं करता है, लेकिन मौका मिलेगा तो चोरी कर लेगा।
अभिप्राय तो है,
अभिप्राय चोरी करने का गया नहीं, तो चोरी का त्याग किया है वो सच्चा
नहीं है।
उस प्रकार से लेना। उसी प्रकार राग सहित जीव नरक आदि के भय से विषयों के सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है, उसको रुचता तो है, उसका राग तो है, तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। वीतरागता होने से विषय सेवन की रुचि ही मिट जाए और विषयों के प्रति और रुचि परिणाम हो जाए, तब तो त्याग होवे तो सच्चा त्याग है। लेकिन परिणाम में, अभिप्राय में, श्रद्धान में तो अच्छा लगता है, लेकिन नरक हो जाए, नरक आदि के भय से उसको छोड़ देता है, तो उसका छोड़ना बराबर नहीं है, तो त्याग भी ठीक नहीं है। तो इसका क्या, इस पर क्या विशेष विचार करना चाहिए कि कोई भी संप्रदाय में त्यागी हो तो त्याग के पीछे इसका अभिप्राय क्या है वो देखना पड़ता है, तब त्याग का मूल्यांकन करना ठीक है। थोड़ा दबाई दबाई
अगला ही
जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन टेबल पर कोई काटा हुआ, छरी से काटा हुआ कोई दर्दी मर जाता है, पेशेंट मर जाता है, तो उसको उसके ऊपर खून का आरोप लगाया
नहीं जाता
है। छरी भी खून समेत है, डॉक्टर के हाथ में है और वो काटते काटते मर गया, अभिप्राय क्या है उसको बचाने का। ऐसे कोई बाह्य देखा, उसे बाह्य त्याग से उसका मूल्य नहीं करना चाहिए, उस त्याग के पीछे इसका क्या अभिप्राय है। उसने मानगर्भित त्याग किया है, मोहगर्भित त्याग किया है, दुखगर्भित त्याग किया है, भयगर्भित त्याग किया है, इस सब प्रकार के परिणाम से अगर त्याग किया है तो वो कषाय गर्भित त्याग है, वो सच्चा त्याग नहीं है, वो स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा त्याग का स्वीकार नहीं करना चाहिए त्याग के रूप में। परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है तब उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता, तथा जैसे अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता, क्या अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता, क्योंकि उसको तो अमृत मिलता है, उसको मामूली भोजन है वो नहीं रुचता, जैसे अपन अन्न खाते हैं तो अपने को घास फूस का जो गाय भैंस खाता है वो अपने को रुचता नहीं है, हम घास फूस नहीं खाएंगे क्योंकि अन्न खाते हैं, अन्न मीठा लगता है, वो चीज अच्छी नहीं लगती है। उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है। उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके क्या अंदर में आत्मा की शांत रस का आस्वादन करने से या आत्मा के आनंद रस का आस्वादन करने से जिसको विषय सेवन है वो दुख रूप लगता है, अरुचि लगता है, क्योंकि दुख रूप लगता है, ऐसा हुआ है। इस प्रकार फलादि की अपेक्षा परिसर सहनादि को सुख का कारण जानता है, उसको ऐसी अरुचि तो नहीं हुई है, ऐसी अरुचि होनी चाहिए, वो तो उनको नहीं हुई है, पर इस प्रकार फल आदि की अपेक्षा परिसर सहन आदि को सुख का कारण जानता है कि मैं परिसर सहन करूंगा, तब करूंगा तो इसका फल है, वो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, तो फल की लालच से वो करता है, तो लालचू है। जैसे कोई संसार में व्यापार व्यवसाय नौकरी करता है तो फल के लालच से करता है, पर ये तपश्चरण आदि करता है तो भी फल के लालच से करता है, दोनों में क्या फर्क हुआ? कि कोई फर्क नहीं हुआ। तो उसको परिश्रम तपादि को सहन करना सुख का कारण जानता है और विशेष सेवन आदि को दुख का कारण जानता है। तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि अभिप्राय जो चालू रहा, ये इष्ट है या अनिष्ट है, इष्ट का राग अनिष्ट का द्वेष, राग द्वेष दोनों चालू रहा। जिसको राग द्वेष चालू रहा इसका मोह नहीं गया है, मोह नहीं गया है तो उसको वितरागता उत्पन्न नहीं होगी। यह तो वितराग मार्ग है, जिन मार्ग है यह तो वितराग मार्ग है, रागी का राग का मार्ग नहीं है, वो पहले ध्यान में रखने का है। वितरागता होती है कि नहीं होती है? तथा तत्काल परिसह सहनादिक से दुख होना मानता है, जो परिसह प्रतिकूलता आती है इससे दुख होना मानता है, और विषय सेवनादिक से सुख मानता है, प्रतिकूलता में दुख अनुकूलता में सुख। तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव तो नहीं होता। जिससे सुख दुख की मान्यता हो उसको तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि रहेगी तो उसको तो राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? टोडरमल जी वो कहते हैं कि पहले राग द्वेष का अभिप्राय को खत्म करो तो राग द्वेष खत्म हो जाएगा, और राग द्वेष का अभाव होने से वितरागता उत्पन्न होगी, और वही सच्चा जिन मार्ग है। अभिप्राय राग द्वेष का इष्ट अनिष्ट का अभिप्राय का रहा और त्याग कर दिया तो वो त्याग सच्चा त्याग है ही नहीं। और जहाँ राग द्वेष है वहाँ चारित्र नहीं होता, भले ही त्याग किया हो लेकिन राग द्वेष जहाँ रहा है वहाँ चारित्र नहीं है, क्योंकि चारित्र है वो जीव के परिणाम की दशा है, ये जीव की दशा है, वो बाह्य पदार्थ के ग्रहण त्याग की दशा नहीं है। इसलिए यह द्रविलिंगी मैंने दीक्षाधारी साधु का जिसको चिन्ह है दीक्षा का, वो विषय सेवन छोड़कर तपश्चरण आदि करता है तथापि असंयमी ही है। क्या कहा? बार में विषय सेवन छोड़ करके संयम पालन करता है, जिनेंद्र भगवान उसको असंयमी कहता है, ये पंडित जी नहीं कहते हैं, जिनेंद्र भगवान उसको असंयमी कहता है कि उसके परिणाम में संयम है नहीं। परिणाम में संयम नहीं है तो बाह्य संयम की कोई गिनती नहीं है। बाह्य संयम को कब गिना जाए, उसकी गिनती कब करें कि परिणाम में संयम आ जाए। तो परिणाम में जिसको संयम नहीं है उसका बाह्य संयम कोई दूसरे कारण से है, वो कारण भी यथार्थ नहीं और कार्य भी यथार्थ नहीं है। सिद्धांत में मैंने जैन सिद्धांत में, सिद्धांत का अर्थ है कि जैन सिद्धांत में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है। अध्यात्म का यह सिद्धांत है, किस किसका सिद्धांत है ये? ये अध्यात्म का सिद्धांत है। तो अध्यात्म के सिद्धांत में असंयत सम्यक दृष्टि, जिसको कोई त्याग नहीं है, व्रत नहीं, पचखाण नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोई नो, वहां पद्म तीर्थंकर थे श्रेणी के ठाणांग जो लियो श्रीमद राजचंद्र जी पक्ष है। ठाणांग सूत्र में, ठाणांग सूत्र ने जो गणधर देव ने बार अंग लिखा है, इसमें एक ठाणांग सूत्र है, बार अंग में एक अंग है ठाणांग, उसमें ऐसा लिखा है कि ये जो वर्तमान में श्रेणिक महाराजा है उसको कोई त्याग नहीं है, उसको कोई पचकाण नहीं है, लेकिन वो आगे का आदिनाथ भगवान आने वाले जो तीर्थंकर है उसमें महापद्म नाम का धारक पहला तीर्थंकर आदिनाथ भगवान होगा। जैसे इस चौबीसी का ऋषभदेव भगवान आदिनाथ भगवान है, तीर्थंकर आदि मैंने पहला, ऐसा श्रेणिक महाराजा का भी भावी चौबीसी में आने वाली 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर की पदवी है। वो उनको कोई त्याग पचकाण नहीं था, लेकिन द्रविलिंगी साधु से भी उसकी महानता है। द्रविलिंगी हीन है इसके पास, वो उत्कृष्ट है। ये किसकी महिमा है? सम्यक दर्शन की महिमा है कि जिसके आगे पंच महाव्रत समिति गुप्ती की कोई गिनती द्रविलिंगी की गिनने में नहीं आती, ऐसी बात है। और देश संयत मैंने पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक, देश मैंने जिसको पूरा त्याग नहीं है मुनि जितना, गृहस्थ अवस्था में अल्प त्याग किया है, देश मैंने अल्प त्याग जिसने किया है वो भी इसके महान है, इसके नीचे ये हीन है। जिसको ज्ञान नहीं, श्रद्धान सही नहीं है, सच्चा नहीं है, उसका त्याग भी सच्चा नहीं है, वो सम्यक दृष्टि ग्रस्त से भी हीन है। हीन है मैंने नीचे दर्जे का है। क्यों? क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुणस्थान है और इसके पहला ही गुणस्थान है। ये करणानुयोग का सिद्धांत लिया और टोडरमल जी का मुख्य तौर से करणानुयोग के दृष्टिकोण से ही लिखने का पद्धति है। इस आगम की जो पद्धति है वो करणानुयोग की पद्धति से मुख्यतया लिखा गया है, क्योंकि जो द्रविलिंगी साधु है जिसको श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है, वो पंचमाव्रत ग्रहण करके दीक्षा का व्रत का यथार्थ पालन करता है शास्त्र अनुसार, वो किस गुण स्थान में है? पहला गुण स्थान में है। और सम्यक दृष्टि व्रत पचकाण नहीं है वो चौथा गुण स्थान में है, अल्प त्याग सम्यक दृष्टि करता है तो पांचवा गुण स्थान में आता है और ये पहला गुण स्थान वाला है। वो भगवान के सिद्धांत में वो बात है, इसलिए मात्र बाह्य त्याग को देख करके स्वीकार करना नहीं चाहिए, उसका श्रद्धा ज्ञान का परीक्षा करना चाहिए। असंयमी को वंदन पूजन नहीं किया जा सकता, उसका वंदन नमस्कार किया जा सकता, पूजते तो नहीं है लेकिन वंदन करते हैं आजकल लोग, तो वंदन करना नहीं चाहिए।
इसका
खुलासा
यह कर दिया
गया है, नहीं समय दृष्टि को संयम में नहीं लिया है, वो चतुर्थ गुण स्थान वाला है, उसको धर्म की प्राप्ति है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म की प्राप्ति उसको है, और धर्म है वो सदा सर्वदा हमेशा पूजनीय होता है। जब धर्म पूजनीय है तो जो धर्म का धनी धर्मी है वो धर्म धर्मी से अभेद होता है, भिन्न होता नहीं है, तो धर्मी पूजनीय होता है, ऐसी बात है। और वो त्याग किया है फिर भी अधर्म है तो वो पूजनीय नहीं है, वहाँ धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म नहीं है, यही कारण है। हाँ कुदे कुगुरु नहीं, एम नहीं छे, जैन जैन छे, जैन शास्त्र पढ़ा है, जैन शास्त्र को जानता है, जानकारी किया है, और जिनोक्त व्यवहार को पालन करता है, इसलिए वो कुदेव में नहीं जाता, वो कुदेव कुगुरु में नहीं जाता। जैना भाषा का तो प्रकरण चलता है, प्रकरण जैना भाषा का चलता है, कुदेव कुगुरु वाला प्रकरण चला गया, वो प्रकरण इधर नहीं है, इसलिए वो बात इधर नहीं है, वो अपेक्षा नहीं लागू पड़ती। यहाँ कोई कहे कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति विशेष है, तो कोई तर्क कर सकता है कि आपने ये कहा कि सम्यक दृष्टि भले ही व्रत पचकार नहीं हो तो उसको कषाय की प्रवृत्ति है, वो धंधा करता है, व्यापार करता है, गृहस्थी चलाता है, कुटुंब परिवार वाला है, उसको तो सब पाप के परिणाम है, ये सब पाप के परिणाम है, सम्यक दृष्टि को तो है, हाँ कोई राजा भी होता है तो राज चलाता है, युद्ध करता है, मारामारी करता है, लड़ाई करता है, सब होता है। सम्यक दृष्टि मारामारी करता है कि नहीं करता है, हैं? माने कोई अभी कोई मारामारी करे तो अरे सम्यक दृष्टि है, मारामारी करता है, हो ही नहीं सकता। चलो ये तो लड़ाकू है, लड़ाकू क्या कहेगा
सामने में तो नहीं माने
यहाँ तो कहते हैं सब प्रकार के परिणाम है, कषायों की प्रवृत्ति विशेष है, क्या है, असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि के जो साधु दीक्षाधारी है इससे कषायों की प्रवृत्ति तो विशेष मैंने ज्यादा है, अधिक है, और द्रविलिंगी मुनि को थोड़ी है। उसका हिसाब किताब कहाँ लगाया, कषाय की मंदता और कषाय की तीव्रता। इसी से असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं, और इस कारण से इनके परिणाम के फल में उत्कृष्ट कहाँ है, 16वां स्वर्ग, 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जाते वो, जबकि द्रविलिंगी अंतिम ग्रेवक पर्यंत जाता है, नवमी ग्रेवक पर्यंत जाता है, जो ग्रीवा है, ग्रीवा मैंने लोक, ये जो लोक 14 ब्रह्मांड है उसमें वो मनुष्याकार है, उसमें ग्रीवा के स्थान में अंतिम विमान है, नव विमान है उसमें, ये अंतिम विमान है, वहाँ जाता है वो द्रविलिंगी साधु। बहुत कषाय के मंद परिणाम होते हैं, तो इसके फल भी बता दिया, इसके परिणाम भी बताया और इसका फल भी बताया। अगर फल नहीं बताते तो परिणाम की खातरी नहीं होती, प्रतीति नहीं आती कि इसके परिणाम कैसे होंगे, परिणाम सम्यक दृष्टि के ऊंचे होंगे इसलिए वो महान है, और इसके परिणाम ऊंचे नहीं होंगे तो वो हीन है, तो ऐसा नहीं है। मंद कषाय तो इसका ज्यादा है, किसका, द्रविलिंगी का मंद कषाय ज्यादा है और सम्यक दृष्टि का मंद कषाय से ऊंचा है, कम है। इसलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रविलिंगी हीन कहो, जो भावलिंगी 6ठा 7वां गुण स्थान वाला है इससे तो द्रविलिंगी मुनि को आप हीन कहो, उसे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहा जाए, ये बात हमको बैठती नहीं है, ऐसा एक प्रश्न उठाया है, उसका समाधान, प्रश्न अच्छा उठाया है। कसाई का हिसाब लगाया, वितरागता और राग का हिसाब नहीं लगाया, देखो कसाई का हिसाब लगाया, मंद तीव्र कसाई का हिसाब क्या है, इसमें समाधान देते हैं कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति तो है, वो तो हम मानते हैं और इसके फल को भी हम मानते हैं, उसकी प्रवृत्ति को भी हम जानते हैं, परंतु अब परंतु कह करके इसकी विशेषता दिखानी है। श्रद्धान में किसी भी कषाय के करने का अभिप्राय नहीं है, जबकि द्रविलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। देखो अभिप्राय का दोष है, अभिप्राय का दोष बड़ा दोष है, वो श्रद्धान के साथ संबंध रखता है। चोरी नहीं करता है लेकिन चोरी करने का अभिप्राय है तो कभी भी चोरी करेगा, मतलब वो है, तो उसका कसाय करने का अभिप्राय है बड़ा दोष है, और उसका कसाय ज्यादा है लेकिन करने का अभिप्राय, कसाय के एक कण को भी वो भला नहीं जानता। और ये मंद कसाय में बहुत कसायों को, बहुत शुभ कसाय को भी भला जानता है, बहुत बड़ा अंतर है, उनका से नाप लेना है, देखो अभिप्राय से नाप लेना है। दृष्टांत तो समर्थ लेना पड़े, इसलिए कि नीचे वाला सब उसमें आ जाता है, इसलिए फिर से, परंतु श्रद्धान में सम्यक दृष्टि किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय सम्यक दृष्टि को नहीं है, जब मिथ्या दृष्टि द्रविलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय है, श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, श्रद्धान में तो श्रद्धता है लेकिन वो ज्ञान प्रधान श्रद्धान लिया है, कि श्रद्धान में तो उसको भला जानता है ये करने लायक है और करना चाहिए, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसको अधिक कषाय है। अब सिद्धांत से ले लेवे, सिद्धांत से ले लेवे तो असंयत सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी गई है, 16 कसाई में से 4 का अभाव हुआ है और 12 का सद्भाव है, जबकि द्रव्यलिंगी को 16 का सद्भाव है, तो किसको ज्यादा है कसाई, किसको ज्यादा है, द्रव्यलिंगी को ज्यादा है। और ये अनंतानुबंधी का जो क्रोधमान माया लोभ की चौकड़ी है वो अनंत संसार का कारण है, तो द्रविलिंगी साधु होने पर भी अनंत संसार अनंत भव भ्रमण करेगा, जबकि सम्यक दृष्टि को 2-5 भव में उसका निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी, ये सम्यक दर्शन की महिमा है।
अपना लेखा ही मजा अलग
है, वो ये भगवान का लेखा है, ये जिनेंद्र भगवान का लेखा है, तो गिनती करने की पद्धति जिनेंद्र भगवान की है, किसी के घर की नहीं है।
पार्श्वनाथ भगवान का दिव्य ध्वनि में क्या है,
पार्श्वनाथ भगवान के दिव्य ध्वनि में यही बात आया कि पहले सम्यक दर्शन को ग्रहण करो, चौथे गुण स्थान में आओ, फिर पांचवें गुण स्थान में आओ, फिर छठे सातवें साधु पद में आओ। पहले गुण स्थान में साधु पद की दीक्षा धारण करके कोई काम होने वाला
नहीं है,
ऐसी बात है। मुमुक्षु अपना अभिप्राय ऐसा करना कि हमको पहले अभिप्राय को ठीक करना है, पहले त्याग में जाएंगे और अभिप्राय अपना ठीक नहीं हुआ तो वो त्याग हमारा बेकार हो जाएगा, ऐसा लेना है। आज भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक है, पार्श्वनाथ भगवान बनारस में काशी में जन्म हुआ था, बनारस काशी वाराणसी तीन नाम है, इस नगरी का तीन नाम है, काशी भी इसका स्टेशन है और वाराणसी भी इसका स्टेशन है, बनारस भी कहते हैं प्रसिद्ध रूप से, बनारस भी गर्भ कल्याणक भी वहाँ है जन्म कल्याणक भी वहाँ है और दीक्षा कल्याणक भी, तीन कल्याणक बनारस में हुए हैं, फिर मोक्ष कल्याणक और समय शिखर में, और निर्वाण भी समय शिखर से गए हैं, ऐसे वो समय शिखर से गए हैं। तो ये समय शिखर का आजकल झगड़ा चल रहा है ना, दिगंबर श्वेतंबर का बहुत चला है, तो उसके विषय में आज पूजा का वो रखा था प्रोग्राम, इसका यही कारण है कि जो जैन है उन सबों को यहाँ पूजन दर्शन का समान अधिकार होना चाहिए, एक का हो दूसरे का नहीं हुए वो बात न्याय संपन्न नहीं है, इसलिए तो झगड़े का तो बहुत से मुद्दा है, तो इसमें तो हमको नहीं जाना है, वो तो काम कोर्टबाजी का सब न्यायालय। यहाँ कहते हैं कि इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा लिया जाए या अनंतानुबंधि की अपेक्षा लिया जाए, दोनों दर्शन में और चारित्र में दोनों प्रकृति के, तो असंयत सम्यक दृष्टि से भी द्रविलिंगी साधु के अधिक कषाय है पहला गुण स्थान होने से, तथा द्रविलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है और अघाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ शुभ योगों के अनुसार है। अब क्या है, करणानुयोग का सिद्धांत दर्शाते हैं, ये शास्त्र ही करणानुयोग की मुख्यता से लिखा है कि द्रविलिंगी के मन वचन काया के योग में, योग की प्रवृत्ति में शुभ भाव शुभ रूप बहुत, शुभ योग और शुभ उपयोग ज्यादा है उसको, वो व्यवसाय कुटुंब नहीं है, उनको त्याग कर दिया है, तो शुभ ज्यादा है अशुभ कम है, तो इसका फल क्या होगा, शुभ अशुभ का फल का क्या कहाँ आता है, अघाती में, अघाती कर्मों में, अघाती मैंने वेदनी आयुष्य नाम और गोत्र, चार प्रकार के कर्म अघाती है, नानावरणी दर्शनावरणी अंतराय और मोहनी, ये चार घाती कर्म है, ऐसे आठ कर्मों की मुख्य प्रकृति है, बाकी सब प्रकृति इसके पेटा में है, इसकी शाखाएं हैं सब। तो घाती कर्मों में पुण्य बंध का विशेष शुभ शुभ योगों के अनुसार होता है, विशेष मैंने ज्यादा, जिसका पाप योग होता है तो उसको अघाती का विशेष लंबा वो स्थिति बंद होता है, तो पुण्य विशेष जो होता है तो उसको भी अघाती में स्थिति विशेष बहुत होता है, जैसे कि पुण्य करने वाला है उनका देव का आयु लंबा हो जाएगा, पाप करने वाले का नारकी का आयु लंबा हो जाएगा, जितना पुण्य ज्यादा उतना देव आयु लंबा, जितना पाप ज्यादा इतना नरकायु लंबा, ऐसे वो अघाती पर उसका इफेक्ट आता है, उसका फल कहाँ आता है, अघाती में आता है, इसलिए वह मैंने द्रविलिंगी साधु अंतिम ग्रेवक पर्यंत पहुंचता है, नवमी ग्रेवक पर्यंत इकतीस सागर की स्थिति में जाता है, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है। देखो नवमी ग्रेवक का देव का भव कार्यकारी नहीं है, तो यहाँ पैसा श्रीमंताई मिल जाए या राजपाट प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति हो जाए तो कितना कार्यकारी है,
बिल्कुल कार्यकारी नहीं है,
कार्यकारी
नहीं है।
क्या लिखा है, परंतु वह अंतिम ग्रेवक का भव है वो बिल्कुल कार्यकारी नहीं है। क्यों कार्यकारी नहीं है, बड़ा देव हो गया या बजा राजा हुआ श्रीमंत हुआ पैसा वाला हुआ, क्यों कार्यकारी नहीं है, कि इस जीव को ऐसे संयोग से सुख मिलता नहीं है, उपाधि बढ़ती है, सुख नहीं मिलता है, दुख की उपाधि, उपाधि का दुख बढ़ता है उसको, इसलिए वो कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन सुख का है, प्रयोजन बाह्य संयोग का नहीं है। जैसे कोई एक श्रीमंत को सवा मन की तलाई 25 किलो की तलाई में उसको नींद लेने का सामग्री है, संयोग है, फिर भी इसको नींद नहीं आती है, उपाधि बहुत है। और किसी एक मजदूर को बिछाने का भी उसके पास दरी नहीं है, शतरंजी नहीं है, हाँ, पर वो किसी के अपने झोपड़ी में या किसी के बाहर उठा उठा पर ऐसा रख के सो जाता है, और इसको बहुत नींद अच्छी आती है। उपाधि नहीं है तो नींद बहुत अच्छी आती है, परिश्रम करता है, नींद बहुत थकावट से नींद आ जाती है। अब नींद का सुख गिने अपन, नींद में सुख नहीं है, ये तो दृष्टांत में ले रहे, तो कौन सुखी है? सवामण की तलाई में ऐसा 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 होता है वो सुखी है, या आराम से निंद्रा लेता है वो सुखी है? कौन सुखी है बताइए? तो सुख बाह्य सामग्री में
नहीं है,
नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए वह कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। वो अघातिया कर्म है, मानो के सम्यक दृष्टि नीचे के स्वर्ग में गया और द्रव्यलिंगी ऊपर के स्वर्ग में गया, तो उसके अघाती का जो ऊपर नीचे का बंद हुआ वो घात, वो आत्मगुण को घातने वाला नहीं है। ऐसे यहाँ कोई सम्यक दृष्टि हो, निर्धन हो, रोगी हो, हाँ, तो आत्मगुण का घातक नहीं है। प्रतिकूलता वाला हो, उसका सब अपमान करता हो, हाँ, अरे घर से भी निकाल देता हो, हाँ, चले जाओ हमारे, हम तुम्हारे के साथ नहीं रहेंगे, हाँ, तो ये जो प्रतिकूलता है वो आत्मगुण की घातक नहीं है। क्या ये प्रतिकूलता आत्मगुण की घातक
नहीं है?
क्या एक एक बात में क्या लिखता है कि अघात्या कर्म और कर्म फल आत्मगुण के घातक
नहीं है,
नहीं होता। इसलिए सातवीं नारकी में भी धर्म की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और वहाँ वो सुखी होता है। धर्म मैंने क्या, आत्मा के सुख शांति का पैदा होना, उत्पन्न होना, उसको धर्म कहते हैं। धर्म कोई मंदिर जाना धर्म नहीं है, शास्त्र पढ़ना भी धर्म नहीं है, माला फिरना भी धर्म नहीं है, और दया दान करना भी
धर्म नहीं है,
और उपवास करना भी
धर्म
नहीं है। आत्मा को आत्मा की शांति, आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख प्राप्त हुए उसी का नाम धर्म है, क्योंकि वो आत्म स्वभाव है। वत्थु सहाणो धम्मो, हमारे जिन सिद्धांत में क्या बात लिखी है, वत्थु सहा वो धम्मो, वस्तु का स्वभाव वो धर्म है, कोई रूढ़ी रीति रिवाज धर्म नहीं है। बात कोई अलग है, धर्म की बात कोई अलग ही है। ये जिनेंद्र परमात्मा की बात है, लोग समझते हैं वो बात अलग है, जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है वो बात बिल्कुल अलग है, ऐसी बात है। देखो क्या कहा, क्योंकि अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है, उनके उदय से, इनके फल आने से उच्च निज पद प्राप्त किए तो क्या हुआ, कोई उच्च पद में आ गया तो वो कार्यकारी नहीं है, निज पद में आया तो वो भी कार्यकारी नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है, वो तो अघाति का फल है। इसकी गिनती करने वाले ज्ञानी नहीं होते, इसकी गिनती करने वाले ज्ञानी नहीं होते। वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग है। क्या है ये संसार का एक नाटक चलता है, संसार की रंगभूमि, रंगभूमि मैंने स्टेज, संसार के स्टेज पर नाटक चलता है। इसमें कोई भिखारी का वेश धारण करके आता है, कोई जीव राजा का वेश धारण करते आता है, कोई स्त्री बनता है, कोई पुरुष बनता है, कोई चाकर बनता है, कोई नौकर बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई व्यापारी बनता है, कोई कोई बनता है, सब वेश है, स्वांग है, वो टेम्पररी है, ये जीव का मूल स्वरूप
नहीं है,
नहीं है। ये अपने एक्टर होते हैं, अभिनेता उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिनय करने वाले को अभिनेता कहते हैं। उसको नाटक में भिखारी का स्वांग लेना पड़ता है और स्टेज के बाहर उसकी मर्सिडीज खड़ी है 15 लाख की है, उसकी गाड़ी खड़ी है और वो स्टेज पर आकर के क्या कहता है, बाबा पैसा दे दो, बाबा कोई हमको पैसा दे दो, मैं अंधा हूँ, मैं भिखारी हूँ। तो क्या वो मानता है अपने को भिखारी है? आया था तो सूट पहन के आया था, फिर मेकअप रूम में जाकर के भिखारी का मेकअप कर लिया और स्टेज पर उतना रोने लगा, उतने रोने लगा कि देखने वाले को भी रोना आ गया। वो रोता था सच्चा था क्या?
नहीं,
आंख में आंसू तो दिखता था, सच्चा था?
नहीं,
झूठा है, ये दिखावा है। वो मानता नहीं, ऐसे जीव को संसार के स्वांग को अपना सच्चा स्वरूप मानना नहीं चाहिए। ये एक नाटक है, नाटकबाजी कर लो, बात खत्म। इससे कोई ज्यादा लगाव रखना नहीं चाहिए। ये तो फंसे हैं तो उसको करना पड़ता है, और क्या है, वो भी बुरा मानता है, अच्छा तो नहीं मानता है, लेकिन करना और करना पड़ता है वो बात अलग है। वो तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग है। आप तो आत्मा है, हम तो आत्मा है, क्या है, हम तो
आत्मा
है, हम कोई मनुष्य नहीं, हम कोई बनिया नहीं, हम कोई फलाना फलाने नहीं, हम तो आत्मा है। इसलिए आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है। ज्ञानावरणी नहीं होना, दर्शनावरणी नहीं होना, मोह नहीं होना, अंतराय
नहीं होना,
वो कार्यकारी है, इसकी हीनता कार्यकारी है। बहुत अच्छा प्रकरण लिखा है। उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। क्या ये घातिया कर्म का बंध होए, वो बाह्य प्रवृत्ति शुभाशुभ प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, वो आराधना विराधना के अनुसार है। क्या
आराधना विराधना
घातिया कर्म है, वो आराधना विराधना के अनुसार उसका बंध होता है, शुभाशुभ अनुसार नहीं होता है। सुबह शुभ अनुसार घातिया का बंध होता है और आराधना विराधना के अनुसार घातिया का बंध होता है। वो लाइन दूसरी है बिल्कुल, परिणामों की जाति अलग है। घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। बाह्य प्रवृत्ति मैंने सुबह शुभ प्रवृत्ति मन वचन काय के योग के, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। कषाय नहीं लिया यहाँ, कषाय शक्ति, कषाय रस को कषाय शक्ति कहने में आई है। तो रस का प्रकरण तो अपनी चर्चा में बहुत चलता है। कषाय एक बात है, कषाय रस कोई दूसरी बात है। हमारा ध्यान कषाय पर जाता है, कषाय रस पर नहीं जाता है, क्योंकि ये शक्ति है, शक्ति को नहीं हम पहचानते हैं। बाहर में देखो बम पड़ा है तो शक्ति को पहचानेंगे, कोई कहेंगे कि भाई स्टेशन पर मत जाओ, रेलवे स्टेशन पर बम पड़ा है तो कोई जाएगा? गया हो वो भगने लगेगा, वहाँ प्रश्न नहीं उठाएगा कि फूटा तो नहीं है, हमने देखा तो नहीं है। देखने की भी जरूरत नहीं, फूटने की भी जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत है, क्योंकि उसकी शक्ति को देख लिया। हाँ, बॉम्ब को नहीं देखा, बॉम्ब के देखे बिना उसकी शक्ति को स्वीकार कर लिया और भागने लग गया। तो यहाँ भी कसाई का बॉम्ब है, उसकी शक्ति को देखो, कसाई को मत देखो, कसाई की शक्ति को देखो, कसाई रस क्या है उसको देखो, रस मैंने शक्ति। अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार घातिया कर्म का बंध होता है। जितना कषाय रस तीव्र है, देखो ये प्रकरण चला है शास्त्रों में, कषाय रस का प्रकरण चला है।
अलग एंटिटी है।
हाँ, इसकी एंटिटी बिल्कुल अलग है। कषाय की एंटिटी दूसरी है और कषाय रस की एंटिटी दूसरी है, और अलग जानना चाहिए। ये तो प्रकरण चला है।
हाँ, कषाय शक्ति कम करने को क्या करना?
वो भी बाद में लेंगे, अभी तो चलता है। बोले अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार घातिया कर्म बनता है। नानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, वो कषाय रस के अनुसार बंधेगा। इसलिए द्रविलिंगी की अपेक्षा असंयम व देशयम सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। द्रविलिंगी को घाते का कर्म ज्यादा बहुत बंद पड़ता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय को, जबकि सम्यक दृष्टि को थोड़ा पड़ता है। तो घातिया कर्म बंद का कषाय शक्ति तोड़ने के लिए क्या करना, कि सम्यक दृष्टि होना। सीधा उत्तर है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, इसलिए घातिया से बचोगे, वरना घातिया तुम्हारा घात
करेगा।
वो जीव गुण का घात करता है, और जीव गुण में भी सुख शांति है, उसका घात करता है। जिस मनुष्य ने अपने एक दृष्टांत लेवे, जिस मनुष्य ने बहुत कषाय रस से अपने उदय के परिणाम में प्रवृत्ति किया हो, चाहे धंधा हो, नौकरी हो, राजपाट हो, राजकारणी हो, कोई भी हो, जिसका जिसको उदय है, बहुत तीव्र से जिसने परिणाम किया हो, और पुण्य योग से उनको सब प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति हो गई हो, फिर भी उसको चैन नहीं होता है, इसका क्या कारण? कि उसने जो कषाय शक्ति से, कषाय रस से जो परिणाम किया, उस परिणाम के कारण से उसका आत्मगुण सुख शांति का घात हुआ है। तो उसकी शांति का तो घात हो गया है, उसको शांति मिलेगी कहां से? बाहर में संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन सुख शांति मिलने वाली
नहीं है।
क्यों नहीं मिली? कि कषाय रस तीव्र करके उसने परिणाम किया है, इसलिए सुख शांति का घातक है, आत्मगुण का घातक है। तो उसको फिर बेचैनी हो जाएगी। वो अमेरिका में वो तो होता ही है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है और सबूत है, साबित ही है, वो अमेरिका है। कि अमेरिका में मल्टी मिलियनर्स है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं लोगों के पास इतने पैसे। अपना दोस्तों गरीब में गिनने में आता है, ये गरीब देश है, वहाँ लोगों को चैन नहीं है, बहुत दुखी है, कोई चैन नहीं पड़ता। बहुभाग लोगों को ट्रैंक्विलाइजर, नींद की गोली लेनी पड़ती है, बहुत को हार्ट डिजीज होता है, मैडनेस का वहीं केस ज्यादा है। अमेरिका का स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, मैडनेस, डायबिटीज, एड्स और ये कैंसर, सबका आंकड़ा बड़ा से बड़ा वहां है, यूरोप और अमेरिका में है, जहां पैसा ज्यादा है। वो सुखी क्यों नहीं है? ये तो बाहर की परिस्थिति दिखा है, अंदर में किसी को चैन नहीं है। यही कारण है कि तीव्र रस से वो प्रवृत्ति कषाय की करते हैं, जो भी उदय है उसमें तीव्र रस से कषाय करते हैं। हाँ, तो मंद कषाय का साधन भी नहीं है, यहाँ तो मंद कषाय के साधन बहुत है, वहां तो मंद कषाय के साधन भी नहीं है। एक संडे को जाना चर्च में, वो भी सब नहीं जाते, कोई जाते हैं थोड़ा प्रार्थना करके निकल जाते हैं, चलो थोड़ा मंद कषाय कर लिया। इसलिए द्रविलिंगी की अपेक्षा से असंयत व देशयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। द्रविलिंगी के तो सर्व घाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है, और असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्या तो अनंतानुमंदी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं, ये तो अभाव है। और बाकी के जो अवशेषों का बंध होता है वह भी अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। देखो चार कषाय और तीन दर्शनों के साथ तो गए उनके बंध, यानी कर्म बंध की 121 प्रकृति में से 41 प्रकृति का बंध का अभाव हो गया है। कितना? 41 का 148 है ना, 148 में 27 प्रकृति ऐसी है कि जो सम्यक दृष्टि को उसका बंध होता है, दूसरे संसारियों को नहीं होता है। अब बच्ची मिथ्या दृष्टि को 121 का बंद होता है, सम्यक दर्शन होने से 1/3 का अभाव हो गया, 41 प्रकृति का अभाव हो जाएगा। और बाकी के जो रहे बार कषाय के अनुसार प्रत्याख्यान वर्णी अप्रत्याख्यान वर्णी और संजल, उसमें भी तीव्र रस नहीं होगा, अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंद होगा। तो उतना बड़ा अंतर कैसे हुआ कि सम्यक दर्शन होने से हुआ। पंचमूर्ण स्थान वाले तो 8 ही रहा है, उनको तो आधा चौकड़ी निकल गया है, उनको तो 4 4 8 अभाव हो गया है उसको। तो हाँ, इसलिए यहाँ से लिया कि जिसको सम्यक दर्शन कर पाना है उस मुमुक्षु को तीव्र रस से विषय कषाय में या उदय में प्रवृत्ति करना नहीं चाहिए, इसलिए लिया है। वो ज्ञानी होने का कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। वो अच्छे अच्छे विद्वान वो बात को नहीं जानते, कषाय और कषाय रस अलग अलग बात है। तब चर्चा होती है, अच्छा ये बात तो हमको नहीं मालूम थी, ऐसा कहता है। हम तो होता है कहते हैं कि पाप होता है तो रस तीव्र होता है, नहीं पुण्य में भी तीव्र रस होता है, इसका क्या करोगे? पुण्य परिणाम कषाय मंद है और रस तीव्र हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कषाय शक्ति तीव्र हो गई, तो नानावर्णी दर्शनावर्णी का स्थिति अनुभाग बहुत पड़ेगा, इसका क्या करोगे? ये भक्ति करता है ना, बहुत रस से भक्ति करता है, बहुत रस आया हमको भक्ति में, हमको बहुत रस आया, कषाय शक्ति तीव्र हो गई, इसका क्या करोगे? वो नुकसान है, भिन्नता जाने तो उदय भिन्न है, आत्मा भिन्न है, एक जड़ है एक चैतन्य है, भिन्नता जाने तो रस टूट जाए, जुड़ान छूट जाए, भिन्नता का अनुभव करे। मैं ज्ञान स्वरूपी असंग चैतन्य सदा सर्वदा सर्व से भिन्न हूं, ऐसा अनुभव करे, खत्म उदय। मिथ्यात्व में प्रयास करे, ऐसा समझे, वो समझ को परिणमन करने का प्रयास करे। मिथ्यात्व अवस्था में मुमुक्षु अवस्था प्रयत्न की अवस्था है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। जिसको प्रयत्न नहीं है वो मुमुक्षु नहीं है, चाहे शास्त्र पढ़े चाहे उपवास करे, मुमुक्षु नहीं है। प्रयास होना चाहिए, अंदर में समझ को प्रयोग में परिणमन में उतारने का प्रयास, पुरुषार्थ होना चाहिए, उसी को मुमुक्षु कहते हैं। कितनी देर लगती है? एक ही समय लगता है। पूर्व समय में जो 14वां गुण स्थान में संसारी थे वो एक समय में सिद्ध हो गया, एक समय लगा, दूसरा समय
नहीं लगा।
मोक्ष कल्याणक है ना, निर्वाण कल्याणक है। कितना आत्मा में शक्ति भरी है, इसलिए संयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुमंदी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं, बाकी के का बंध होता है। वो अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है, तथा द्रव्यलिंग के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, वो तो जितना कर्म का उदय है उतनी निर्जरा होगी, दूसरा कर्म की निर्जरा नहीं होगी। सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है, और देश व सकल संयम होने पर तो निरंतर सम्यक दृष्टि को कभी निर्गुण श्रेणी होती है, लेकिन पांचवे छठे वाले को तो गुण श्रेणी निर्जरा होती ही है। इसलिए यह मोक्ष मार्गी हुआ है, द्रविलिंगी साधु संसारी है, पर ये मोक्ष मार्गी है। तो दुर्बल देह ने मांस उपवासी है, जो छे माया रंग जो ने, माया रंग की तो आनंद गंजी है, जो छे माया रंग जो ने तो पण गर्भ अनंता ले से बोले बीजू अंग जो ने आम छे। इससे यह मोक्ष मार्गी हुआ है, इसलिए द्रविणलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है, और वो यथार्थ है। शास्त्र में जो कहा है वो जिनेन्द्र देव का कहा हुआ है, वो यथार्थ है, जिन आज्ञा अनुसार है, और जिन आज्ञा को सम्मत करना चाहिए समझ करके।
शिवादिदेव से सिमंदर भगवान जारिमो परम कृपाणु श्री कानपुर देवन विद्या सिमंबर जय धर्म जय।